नेक्स्ट टॉपिक है अजीम मर्सिये। मर्सिया क्या होता है? अरब कल्चर में मर्सिया बहुत आम था। जब कोई मर जाता, कोई नुकसान होता, यानी गम के इजहार का शेरी तरीका मर्सिया था। तीन मर्सिये ऐसे हैं जिनके बारे में कहे गए इन्हें जिंदा और जावेद बना दिया। मशहूर वजीर इब्ने बकिया को अददुद्दौला ने कत्ल कर दिया। इसका मर्सिया अबुल हसन अल अंबारी ने अपने शानदार और जानदार कसीदे में कहा, जिसके कुछ तबासात और कुछ टुकड़े आप सुन लीजिए। कहते हैं कि जिंदगी और मौत दोनों में बुलंदी का होना एक मौजजे से कम नहीं। लोग तुम्हारे इर्द गिर्द खड़े हुए ऐसे लग रहे थे कि सखावत के दिन हों और लोग वफूद बनाकर आए हों। यूं लगता था कि वो नमाज के क्याम में खड़े हैं और तुम इन्हें खुतबा दे रहे हो। तुम्हारे दोनों हाथ इनकी तरफ बढ़े हुए थे और इन्हें अतीय और इनाम दे रहे थे। जमीन का पेट जब इन कारनामों को छुपाने से आजिज हो गया तो उन्होंने फिजा को तुम्हारी कब्र बना दिया और तुम्हारे मातम के लिए रोने वालियां बुला ली। तुम्हारी किस जमीन को कहूं कि सैराब की जाएगी, तुम तो मूसलाधार बारिशों का निशाना हो। अल्लाह की रहमत तुम पर बराबर हो रही है और खुशबुएं बिखरी हुई हैं जिनसे दिल ठंडा हो। दिलों में तुम्हारी अजमत बैठी हुई है। जिसको हाफिजाने रिवायत और सकात मुहाफिज मिले हैं, रात में तुम्हारी अतराफ में आग जलती है जैसा कि तुम्हारी जिंदगी में हुआ करता था। आपको तो शायद इतना ना ही मजा आया हो क्योंकि हमारा कल्चर नहीं है, लेकिन यकीन करें कि इन चंद जुमलों में उसने उसको ये कह दिया कि तुम्हारी जिंदगी भी बड़ी खूबसूरत थी पर तुम्हारी मौत तो और भी खूबसूरत है। कुछ लोग जिंदगी में इतने कामयाब नहीं होते जितने मरने के बाद होते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत भी मारूफ है कि जिंदा हाथी शायद एक मन का तो मुर्दा हाथी एक लाख का, क्योंकि हाथी के जिस्म के आज़ा और उसके दांत और उसकी जो हॉर्न्स होते हैं ना, ये बहुत कीमती होते हैं। तो हाथी जिंदगी में तो बेचारा कोई इतना काम देता नहीं किसी को, ना दूध उससे मिलता है ना सवारी होती है, तो वो तो बस एक बोझ ही होता है धरती का। लेकिन जब मर जाता है तो उसके जिस्म के ये अज़ा बड़े महंगे होके बिकते हैं। तो ये असल में हमारे यहाँ एक मुहावरा बन चुका है कि जो बंदा बाद वालों के लिए ज्यादा खैर का जरिया बने तो उसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो कितनी खूबसूरत इबारत है, क्या हसीन अशार हैं और कैसी शानदार इकदार की तर्जुमानी करते हैं। कितने बुलंद मानी छुपे हुए इसमें, सुबहान अल्लाह। शायर ने क्या उम्दा तोहफा ममदूह को दिया। ममदूह क्या होता है? जिसकी मदह बयान की जाए। इसके सर पर क्या ताज पहना दिया है कि जब ममदूह के कातिल अददुद्दौला ने यह अशार सुने तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा कि काश मैं कत्ल किया जाता या मुझे सूली दी जाती और ये मर्सिया मेरे बारे में कहा जाता। सोचिए, जिसने कत्ल किया उसको ये महसूस हुआ तो बाकियों को कैसा लगा होगा। इसी तरह मोहम्मद बिन हमीद अल तूसी जिहाद करते हुए शहीद हो गए तो अबू तुमामा ने मर्सिया कहा। उसके कुछ अल्फाज सुनिएगा। इसी तरह इस मामले को बड़ा समझो और आसान न लो, जो आंख ना रोए इसके पास कोई उजर नहीं। मोहम्मद के बाद तो उम्मीदें खत्म हो गईं, तलवार ने सफर से रोक दिया। मोहम्मद ने शहादत के सुर्ख जोड़े पहन लिए जो तारीख रात में रेशम लगते हैं, यानी उनका नाम लिया जा रहा है। आखिर तक पूरा कसीदा यूं ही है। मोतसिब ने इसे सुनकर कहा कि जिसके बारे में ये मर्सिया कहा गया है वो मर नहीं सकता। मशहूर सिपह सलार कुतैबा बिन मुस्लिम के खानदान में एक करीम और शरीफ आदमी था जिसने अपना माल और मर्तबा मुसीबत जदों की गमखौरी में लगाया, आफत के मारों के साथ खड़ा हुआ, मिसकीनों को दिया, भूखों को खिलाया, खौफ जदों की पनागाह बना। जब वो मर गया तो एक शायर ने कहा, इब्ने सईद इस हाल में रुखसत हुआ कि मशरिको मगरिब में इनके गुन गाए जा रहे थे। मैं इसकी सखावत के बारे में नहीं जानता था हत्ता कि इसकी वफात हो गई, यानी जिंदगी में खुला ही नहीं कि वो इतना सखी इंसान था। वो जमीन के एक छोटे से हिस्से में सुकून से लेट गया। जिंदा था तो इसकी समाई से बड़े बड़े मैदान आजिज थे। जब तक मेरी आंखों में आंसू भरे हैं इसे रोऊंगा, आंसू खुश्क हो गए तो दिल रोएगा। मैं कितनी ही बड़ी मुसीबत में हूं इससे घबराया नहीं करता, और तुम्हारी मौत के बाद तो खुशी भी नहीं होती। मुझे लगता है कि तुम्हारे अलावा कोई मरा ही नहीं, न किसी का मातम हुआ। अगर तुम्हारे मर्सिये जबरदस्त हैं तो मौत से पहले तुम्हारी तारीफ में भी जबरदस्त कसीदे कहे गए थे। यानी आप देख सकते हैं कि जब अल्फाज को खूबसूरत तरीके से चुना जाता है तो ऐसी चीजें भी खूबसूरत लगती हैं जिसमें जिंदगी से ज्यादा मौत का जिक्र होता है। इसी तरह अबू नवास मिस्र के अमीरुल खतीब की तारीख लिखता है और इसका नाम जरीदे आलम पर सब्त कर देता है। क्या कहता है, ये भी एक मरसिया है। अगर खसीब के बिलाद में हम न जाएं तो कहाँ जाएंगे? सखावत इससे बचकर जा नहीं सकती, बल्कि जहां वो जाता है इसके साथ साथ ही सखावत चलती है। वो ऐसा आदमी है कि माल से नेक नामी खरीदता है और जानता है कि जमाना उलटता पुलटता रहता है। लोग हसीब की जिंदगी और कारनामों को इन अबियात के हवाले से जरूर याद रखेंगे। तो क्या पता चला कि ये बात के हमारे बाद जिक्र खैर हो, ये बड़ी अहम है। चंद सेकंड के लिए अपने ऊपर लीजिए, फिर जरा सा दोहराई करते हैं इसकी। मेरे मरने के बाद लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे किन बातों से याद रखेंगे, ये सवाल कीजिए। और जितना सोचते जाएंगे अपनी जिंदगी में अच्छे काम करने का शौक उभरेगा। आप देखिए कि जिनके लिए मरसिये कहे गए तो उनका जिक्र खैर बाकी रहा। क्यों भला? इसलिए कि अपनी जिंदगी में लोगों के लिए फायदा मंद है। जो लोगों को फायदा देगा, लोग उसकी कसीदे उसकी जिंदगी में करेंगे, गाएंगे, और उसके जाने पे मरसिये होंगे। अब इस्लाम मरसियों को पसंद नहीं करता, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि जो जाता है वो भी अल्लाह के हुक्म से जाता है। और कसीदों को भी बहुत पसंद नहीं करता, क्योंकि जो दुनिया में आता है या कोई अच्छा काम करता है तो वो भी अल्लाह ही के हुक्म से करता है। लेकिन ये एक असलूबे बयान है। इस्लाम ये पसंद करता है कि किसी की अच्छी बात का जिक्र किया जाए, लेकिन उसके मुंह पे नहीं। किसी की तारीफ की जाए तो उसके पीछे कीजिए, और अगर किसी की कोई कमी बेशी हो तो उसके साथ अकेले में अच्छे तरीके से बात की जाए। हम अमूमन उलट करते हैं, मुंह पे इतनी तारीफें, सामने आए तो वो मोहब्बतें और बुराइयां दूसरों के सामने, खूबियां आपकी आपके सामने। तो ये भी एक काबिले गौर नुक्ता है। हम अगर अपना मामला देखें और किसी के साथ ऐसा करते हैं तो कभी ना कीजिए। दूसरों के सामने बुराइयां रखेंगे वो क्या कर लेंगे, और खूबियां अगर दूसरों को देंगे तो हो सकता है कोई दूसरा भी उस खूबी से फायदा उठा ले। फिर इसी तरह आप देखिए कि माल और रुतबे से अपने मदद करते थे लोगों की। तो फिर जिक्र खैर चाहना बुरा नहीं, अगर नीयत दीन पर चलने की रगबत पैदा करना हो। आप लोगों को बताते हैं हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारे पास ये कोर्सेज हैं, ये हैं, रगबत दिला रहे हैं, इस नीयत के साथ के लोग इससे फायदा उठाएं, तो इंशाल्लाह अगर आपकी कोशिश से कोई फायदा उठा लेगा तो आपका भी फायदा उसमें। देखिए, नेकी का काम एक अजीब काम है। बज़ाहर इंसान दूसरों के लिए कर रहा होता है, लेकिन फायदा सबसे ज्यादा खुद उठा रहा होता है। अल्लाह ताला हमें फायदा लेने और देने वाला बना दे खैर के रस्तों में। छोटा सा एक खुलासा अपने ऊपर लीजिए, महसूस करें और अल्लाह से एक दुआ करें कि अल्लाह हमारे दिल में अपना इतना डर पैदा फरमा जो हमें मासीयत से रोक दे। अंतहू लबैन वबैन मासीयतिक, और तेरी इतात पर इमादा कर दे ताकि हम जन्नत के मुस्तहिक हो जाएं। हमें इतना यकीन अनायत कर जिससे हम मसाहिबे दुनिया को बर्दाश्त कर लें, अपने कानों निगाहों और कुव्वतों में नई जिंदगी दे सकें, और इस जिंदगी को हमारा वारिस बना दे। जालिमों से हमारा इंतकाम ले, दुश्मनों पर हमारी मदद कर, दीन में नास माना, दुनिया को हमारा सबसे बड़ा मकसद और मबलगे इल्म ना बनाना। यानी हम इल्म इसलिए ना हासिल करें कि उससे और दुनिया कमाएं। हमारे गुनाहों के बायस ऐसे लोग हम पर मुसल्लत ना कर जो हम पर रहम ना करें। और अल्लाह करे कि ये दुआ, और ये मसनून दुआ है, कुरान पाक की तिलावत के बाद की दुआओं में आपको मिल जाती है, मसनून दुआओं में से। तो इस तरह की दुआएं मांगकर कभी कभी अपने लिए ये खशियत भी मांगा करे कि अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों से नफरत हो जाए, हर वो आदत जो मुझे तेरी नजरों में छोटा करे मुझसे दूर कर। कभी बैठ कर कॉपी कलम ले और लिखे मेरे में क्या बुराई है, हर एक में होती है, और जितना ज्यादा आप अपनी खुद देख सकते हैं कोई दूसरा तो वहां तक कभी पहुंच भी नहीं सकेगा। एक एक करके पीछे लग जाइए और खुद को खुद चेक कीजिए। और वही जो बात पीछे हमने पढ़ी थी कि हासिबू कबलन तो हासबू, इसी तरह अली बिन मकल्ला कहते हैं जब दिलों पर यास तारी हो यानी मायूसी और मुश्किलात से सीने भी तंग हो जाएं, आफते जमकर बैठ जाएं, बर्बादियां मुसल्लत हों और इनके इजाले का कोई तरीका समझ में ना आता हो, होशियार को भी कोई तदबीर ना सोचे तो ऐसी नामुरादी के आलम में अल्लाह ताला की मदद आएगी जो करीब है और सुनता है। कैसे ही हादसात हों, कैसी ही इनकी हमागिरी हो, इनसे खुलासी जल्द ही होगी। तो फिर क्या सीखा हमने इस छोटे से वक्फे में? अपने ऊपर लेकर सोचिए कि क्या वाकई मैं अपने आप को इसी तरह से कहलाती हूँ? अपनी कमी बेशी, अपनी खामियाँ, अपनी बातें मुझे इसी तरह से महसूस होती हैं। इंशाल्लाह छोटी छोटी एक्सरसाइजेस के साथ हम अपनी इस्लाह करेंगे। देखिए ये तो हम अपने मुहासबे के लिए सब बातें करते हैं ना, किसी को क्या लगे और हमें क्या लगे, अगर हमने अपनी इस्लाह ना की तो बात नहीं बनेगी। तो क्या सोचिए, पहली बात है कि दुनिया के मसाइल चाहे जितने भी बड़े हों बिलाखिर ख़त्म होंगे, क्योंकि कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज़ फ़ानी है, ये मसले चले जाएंगे। आज भी अगर कोई परेशान है, ये मसला वो आ गया, जंग हो गई, ये हो गया, बीमारी आ गई, चला जाएगा भाई। पिछले साल भी तो कुछ आया ही होगा ना, कुरान तो खुद कहता है कि तुम नहीं देखते कि हर साल तुम आजमाए जाते हो। हाँ, रंग बदल बदल के इस वक्त मुसलमानों के ऊपर ही ज्यादा बिजलियां और कड़ाके क्यों हैं? हमारे अपने आमाल हैं, हमारे अपने गुनाह हैं। याद रखिए कि अल्लाह की मदद करीब है। अल्लाह ताला से दुनिया को हल्का और आखरत को बड़ा करने की दुआ करें। कहा करें कि अल्लाह मेरे लिए आखरत को बहुत बड़ी चीज़ बना दे, मैं अपनी आखरत के रिस्क पे कुछ नहीं लूंगी दुनिया में, मुझे नहीं चाहिए इधर। हाँ, अगर इधर भी और उधर भी तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह का ये वादा कि मैं इंसान के गुमान के मुताबिक हूँ, मेरा बंदा मेरे बारे में जो गुमान रखता है ना, मैं उसके साथ वैसे ही मामला करता हूँ। खैर का गुमान रखिए, अच्छी उम्मीद रखिए, अल्लाह ताला के साथ आपका मामला बड़ा ही खूबसूरत मामला हो, तो आप देखेंगे कि उसके बाद आपको महसूस होगा कि अल्लाह ताला भी आपकी उम्मीदों को तोड़ता नहीं। क्योंकि अगली टिप देखिए, यहां से खाली हाथ कोई भी जाया नहीं करता। अमूमन किस दर के लिए ये बात आती है जहां दो दो हाथ से बांटा जाता है? अल्लाह की जात एक ऐसी हस्ती है कि जो कभी मांगने वाले को शर्मिंदा नहीं करती, इनकार नहीं करती, नो तो इस दर पे कोई होती नहीं। तो लिहाजा जब इस दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता तो फिर आपको मुझे फिक्र क्या है? जब आपको मालूम है कि आसमान में एक ऐसा फरमा रवा है जो आदिल, मुनसिफ और बेहतरीन फैसला करने वाला है, जिसने कुत्ते की वजह से एक औरत को जन्नत में दाखिल कर दिया और एक बिल्ली के बायस एक औरत को दोजख में डाल दिया, तो क्या आपको अल्लाह के वादे पर भरोसा रखते हुए पुरसकून और मुतमईन और खुश नहीं होना चाहिए? बनी इसराइल की एक फाहिशा औरत थी, इसने प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह ताला ने इसे माफ कर दिया और जन्नत में दाखिल कर दिया क्योंकि इसके दिल में इखलास था। दूसरी औरत का किस्सा यह है कि इसने बिल्ली को एक कमरे में बंद कर दिया था, ना इसे खिलाया पिलाया, ना आजाद छोड़ा कि खुद कुछ खा पी ले, हत्ता कि वो मर गई। तो अल्लाह ताला ने इस औरत को दोजख में दाखिल कर दिया। तो ये बात कि अल्लाह ताला थोड़े से पर भी बदला बहुत देता है, बंदे के थोड़े से अमल का भी मुआवजा मिलता है। बुखारी की रिवायत है कि 40 आदतें ऐसी हैं जिसमें सरे फहरिस्त यानी सबसे ऊपर टॉप ऑफ द लिस्ट बकरी हिबा करना है। इनमें से किसी भी खसलत पर आदमी अमल करे इस उम्मीद में कि इसे सवाब मिलेगा तो अल्लाह ताला इसे जन्नत में दाखिल करेगा। क्योंकि फमैयामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो शख्स जरा बराबर भी नेकी करेगा वो इसे देख लेगा और जो जरा बराबर बुराई करेगा वो इसे देख लेगा। और इसी तरह फरमाया, अच्छाइयां बुराइयों को खत्म कर देती हैं। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, किसी आफत में मुब्तला की तकलीफ दूर कीजिए। सोचिए किसकी दूर करनी है, टारगेट बनाइए, फिर उसके लिए कोशिश कीजिए। किसी महरूम को दीजिए, मजलूम की मदद कीजिए, भूखे को खिलाइए, प्यासे को पिलाइए और मरीज की आदत कीजिए। जनाजे के साथ चलिए, बेहोश मुसीबत जदा की गम गुसारी कीजिए, भटकते की रहनुमाई कीजिए, मेहमान का इकराम कीजिए, पड़ोसी पर मेहरबान रहिए, बड़े का एहतराम कीजिए, छोटे पर रहम और अपना माल खर्च कीजिए, दिरहम लौटाइए, अच्छी बात बोलिए और किसी को तकलीफ ना दीजिए। यही आपके लिए सदका होगा। ये खूबसूरत मानी, बुलंद सिफात, बहुत ज़्यादा मुसर्रत और इंशराखे सदर लाती हैं, रंजो गम और अफसुर्दगी और कबीदा खातरी को दूर करती हैं। हुस्न अखलाक भी क्या चीज़ है अगर इसकी तजसीम की जाती, यानी तजसीम से मुराद है कि इसको एक बॉडी दी जाती, जिस्म से है तजसीम, यानी वाकई आप हुस्न अखलाक को एक इंसान के रूप में देखें तो यकीनन एक खूब रू, पुरकशिश, मुस्कुराता और अच्छी शोहरत का हामिल आदमी होता। बात तो बिल्कुल सच है, क्योंकि हुस्न अखलाक अपनी जगह खूबसूरत चीज़ है, तो अल्लाह ताला के दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। आप देखिए कि ये जो आयत है ना सूरह ज़िलज़ाल की 7 और 8, के फ़मै यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमै यामल मिसकाल ज़र्रतिन शरन यरा, ये इंसान को बहुत केयरफुल बना देता है, टू मच, एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयरफुल। छोटी से छोटी नेकी भी बंदा अल्लाह के हाथ में देता है इस उम्मीद पर कि वहां से इसका बदला मिलेगा। और याद रखिए कि नेकी इब्तिदा में छोटी होती है, लेकिन अल्लाह के हाथ में जाने के बाद वो घोड़े के बच्चे की तरह बड़ी बड़ी हो चुकी होती है। और इसी तरह आप देखिए कि अगर आपको यकीन है कि मेरा हर छोटे से छोटा अमल, मेरा कॉल, मेरा फेल, मेरी आंख का एक इशारा, मेरे किसी चीज पे कान लगाने को भी अल्लाह ने नोट कर लिया, बिल्कुल रिकॉर्डर की तरह। आप देखिए रिकॉर्डर एक हल्की सी विस्पर को भी एक्सेप्ट कर लेता है, कैमरे के सामने आप एक सेकंड के लिए गुजर जाएं वो आपकी झलक ले लेता है। तो अल्लाह के कैमरे और अल्लाह के रिकॉर्डर्स कैसे हैं? वो अच्छी चीज़ों को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो बुरी चीज़ों को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर इस तरह आप देखिए कि सही बुखारी की ये रिवायत 1417, कि जहन्नम से बचो अगरचे खजूर का एक टुकड़ा देकर ही सही, इत्तको नार वलो बिशिक की तमरा, आधी खजूर कितनी को होगी। आप देखिए कि हमारे कल्चर में खजूर इतनी मारूफ नहीं है ना, सिवाय रमज़ान और इफ्तारियों के, लेकिन अरबों का तो खाना ही ये था। तो अगर आप आधी खजूर दे के जहन्नम से बच सकते हैं तो आधी रोटी दे के भी बच सकते हैं। पूरी खुद खाने की बजाय आधी किसी को दे दीजिए, फिर देखिए उस रोटी से पेट कितना भरता है। और ख़ास तौर पे फिर फी यौम ज़ी मसग़बा, भूख के दिन जब अपना पेट भी चिपका हो और अपनी ज़रूरत से ऊपर दूसरों को लगाएं। और वही सूरत हशर वाली बात कि वलौ कान बिहिम ख़स्सासा, मेहमान को खिला दिया और ख़ुद भूखे रहे, ये आला अख़लाक के बगैर नहीं होता। फिर इस तरह आप देखिए कि मोमिन जो नेकियां करता है उसका बदला उसको दो सूरतों में दिखेगा, एक दुनिया के रिस्क की सूरत में और दूसरा जन्नत की सूरत में। इसके बरक्स काफिर को अच्छे कामों का बदला सिर्फ दुनिया की खुशहाली की सूरत में मिलता है, क्योंकि उसने आखिरत तो मांगी भी नहीं है ना। और सही बुखारी की रिवायत है 41, मोमिन को एक नेकी के इवज 10 गुना, यानी 10 टाइम से लेकर 700 गुना तक, 700 टाइम्स तक सवाब, और एक बुराई का इसी बुराई के मुताबिक बदला दिया जाता है। मगर ये कि अल्लाह ताला इस बुराई से भी दरगुजर करे और इसे भी माफ़ फरमा दे, ये भी इसके लिए आसान है। तो फिर अल्लाह पे नजरें रखिए, हर बात अच्छी या बुरी करने से पहले 10 दफ़ा सोचिए, क्या पता एक छोटी सी नेकी जिसको आपने समझा ही ना नेकी वही जन्नत का टोकन बन जाए, या एक गुनाह जो आप छोटा समझकर, मामूली समझकर बार बार करते हैं, अगर उसी पे पकड़ हो गई तो क्या करेंगे। तो अल्लाह ताला हमें कॉन्शियस बनाना चाहता है, बी केयरफुल, एक्स्ट्रा केयरफुल बनिए, और अल्लाह ताला इसको हमारे लिए आसान कर दे। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सी बात है। अमूमन हम शिकवे करते हैं, दूसरे में आगे नहीं बढ़ने देते, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है, हमें ये नहीं मिलता। अक्सर तो माँ बाप तक से बच्चे परेशान होते हैं और इसी तरह इर्द गिर्द की दुनिया से कंपैरिजन करते हैं। हालांकि आप देखिए मैदान खुला है, आइए बिस्मिल्लाह कीजिए, अपने हुनर दिखाइए, अपनी कोशिशों का रुख खोलकर दिखाइए कि आप कहाँ हैं, किधर हैं। जितना ज़्यादा आप प्रोडक्टिव होंगे और वाकई आप में कोई खूबी होगी, तो अपनी दुनिया आप पैदा कर लेंगे। जो जिंदा नहीं होते ना, वो कुछ नहीं करते। जो जिंदा हैं वो नामुमकिनात को मुमकिन में बदलवा लेते हैं। जोहर की नमाज से 1 घंटा पहले ये कहते हैं कि मैं शदीद गर्मी में हरम में बैठा हुआ था, एक बूढ़ा आदमी उठा और लोगों को ठंडा जमजम का पानी पिलाने लगा। इसके दाएं हाथ में एक प्याला था और बाएं में एक प्याला था। वो इन्हें जमजम का पानी पिला रहा था। जब एक को पिला देता तो दूसरे को पिलाने लगता। इसने बहुत सारे लोगों को पिला दिया। वो पसीने में शराबूर था। लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि इस बूढ़े के हाथ से पी लें। मुझे हैरत हुई कि बूढ़ा कितना मजबूत, साबिर और खैर पसंद है और मुस्कुरा मुस्कुरा कर लोगों को पानी दे रहा है। मैंने जान लिया, भलाई और खैर के काम इनके लिए आसान है जिनके लिए अल्लाह आसान कर दे। वो शायर कहते हैं ना कि अल्लाह अगर तौफीक ना दे, इंसान के बस का काम नहीं। इरफाने मोहब्बत आम तो है, फैजाने मोहब्बत आम नहीं। अल्लाह ताला भलाई के कामों को अहले खैर के लिए मुकद्दर कर देता, जो लोगों के साथ नेकी करना चाहते हैं और किसी का बुरा नहीं चाहते। हजरत अबू बकर सिद्दीक की मिसाल लीजिए। हिजरत में अपने आप को खतरे में डालकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते हैं। हातिम अपने मेहमानों को खाना खिलाने के लिए भूखे सो जाते हैं। हजरत अबू उबैदा मुस्लिम लश्कर के आराम की खातिर रात भर जागा करते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु उस वक्त शहर में चक्कर लगाते हैं जब लोग सोते होते हैं, और कहत साली में खुद भूखे रहकर लोगों के खिलाने का इंतजाम करते हैं। अबू तलहा ओहद में रसूल की हिफाजत के लिए तीर अपने सीने पर लेते हैं और इब्नुल मुबारक रोजे की हालत में लोगों को खाना खिलाते हैं। बकौल शायर, ऐसे लोग सितारों की मानिंद हैं और सुफेदा सहर यानी सुबह की रोशनी की मिसल रोशन होते हैं। वो खाने की अपनी जरूरत के बावजूद मिस्कीन, यतीम और कैदी को खिला देते हैं। सूरह दहर की आयत नंबर 8 है ये। वयुतिमून ताम अला हुब्बिही, अभी खुद भी भूख है खाने की लेकिन दूसरों को खिलाते हैं। तो क्या पता चला, कुछ कीजिए ना, आपकी जिंदगी अभी है, जरा सा अपने माइंड को आगे लेके चलिए। 1 साल, 2 साल, 5 साल सोच लीजिए, पता भी नहीं चलता अब तो 5 साल कैसे गुजरते हैं। आपने अपने लिए क्या सोचा है, क्या करना है आपको अभी दुनिया में? मैं क्यों जिंदा, रोज सुबह उठ के क्यों रोटी पानी का फिक्र लगता है? अगर कोई मेरे लिए करता है तो मैं उसको बदले में क्या दे रही हूं? याद रखिए कि अगर आप जिंदा हैं ना, तो आप अपनी दुनिया खुद बना लेंगे। लोग आपको डिस्करेज करेंगे, हिम्मतें तोड़ेंगे, नामुमकिन के फतवे देंगे, लेकिन आप कहिए कि मैं अल्लाह की मदद से अल हय्युल कय्यूम के सहारे पे ये काम शुरू करता हूँ, अल्लाह इसमें बरकत देगा। करें क्या, सदका जारिया का कोई काम करें, कोई नेकी का काम शुरू कीजिए। सही मुस्लिम की रिवायत है 2351 कि जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका राइज किया तो इसके लिए इसका अपना भी अजर है और इनके जैसा अजर भी जिन्होंने इसके बाद इस तरीके पर अमल किए। फिर मिसालें देखिए, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो का वक्फ किया हुआ बाग, आज भी उसका नफा हरम की तौसी में लगता है। इसी तरह आप देखिए इमाम बुखारी रहमहुल्ला, इमाम मुस्लिम रहमहुल्ला, इनकी किताबें हर मदरसे में पढ़ाई जाती हैं। हर जगह आप देखते हैं कि इनके शागिर्द और शागिर्दों के शागिर्द हैं। ऐसी जिंदगी गुजारिए कि आपके जाने के बाद एंडलेस सप्लाई हो। इसके लिए दुआ मांगनी पड़ती है। आप कहते हैं ये कैसे होता है? चुपके से अल्लाह से मांगिए और सही तरीका इख्तियार कीजिए। अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं तो आप पीछे से आज और आज से कल और कल से आगे परसों अपनी मंजिल के करीब होंगे। मसला क्या है कि नेकी के काम में भी हमें तरतीब नहीं पता होती, हम स्टक होते हैं। अपनी ही जगह पे खड़े होकर गाड़ी घुमाते रहें तो पेट्रोल भी खत्म होगा, गाड़ी भी गर्म हो जाएगी, हो सकता है बैटरी पे बोझ भी पड़े, लेकिन आप पहुंचेंगे कहीं नहीं। पूछिए जरा अपनी पिछली 5 साल जिंदगी में क्या किया, कहाँ पहुंची? 6 साल पहले किधर थी, 7 साल पहले किधर थी? अगर आप कहते इधर ही थी, इसी घर में ही थी और यही मेरा एड्रेस था, ठीक है, नो प्रॉब्लम, एड्रेस बदलने की बात नहीं। आपकी जात से क्या बड़ा, ये चीजें कल इंशाल्लाह आपके और मेरे हक में खैर होंगी। अगली टिप क्या है, कलाम इलाही को सुनिए। ये है वो कलाम जिसको अगर दिल से सुन लिया जाए ना, तो आप फिर आराम से नहीं बैठ सकते। आपको हिदायत मिली कैसे पता चलेगा? जब आपको दूसरों की हिदायत की फिक्र लग जाएगी। अपनी हिदायत पूरी हो ना तो दूसरों की फिक्र लगती है, और अपनी हिदायत पूरी नहीं है तो दूसरों की भी फिक्र नहीं। खुद से पूछिए, मुझे अपने हिदायत पे आने की ज्यादा फिक्र है या दूसरों की? आप कहेंगे जी अपनी, तो फिर तो आप खुद गर्ज हैं। आप अपनी जात, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के अंदर दूसरों को महरूम करते जाएं। बस इस वक्त मैं आपको ये बताने की बजाय, आपकी मदद करने की बजाय, आपको इस टॉपिक पे कुछ गाइडलाइन देने की बजाय हिफ्स शुरू कर दूं, अपनी जात के साथ कुछ और करना शुरू कर दूं जिससे मैं चमक जाऊं, तो मैं अपने लिए तो बहुत अच्छा कर रही हूं सोचने में, लेकिन असल में मैंने आपका हक मारा है। तो जिंदगी में कुरान पढ़ने के बाद जो एक चेंज आती है और आनी चाहिए, वो क्या है कि आप हर दिन दूसरे लोगों को ज्यादा से ज्यादा नफा दें। नफा लेना अब छोड़ दीजिए, अब देने के दिन है। बाज़ बुजुर्ग है वो कहते हैं, हमारे बेटा अब खाने के दिन नहीं है, खिलाने के दिन है। तो आप और मैं भी अपने ऊपर लीजिए कि अब ये हमारे लेने के दिन है या देने के दिन है। और जितना ज्यादा कलाम इलाही सुनते जाएंगे, अल्लाह आपके सीने को खोलता जाएगा। तो क्या करें, किताब इलाही को सुनिए और अपने आसाब को पुरसकून बनाइए। कुरान करीम किसी तजवीद और तरतील से पढ़ने वाले कारी की खुश इल्हानी और खूबसूरती और मौसर पेराए में, पेराया कहते हैं पैराग्राफ कह लीजिए, तिलावत सुनने से अल्लाह की रजामंदी भी मिलेगी, नफ्स को सुकून और दिल को यकीन और सलामती हासिल होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाद सहाबा से कुरान सुनना पसंद करते थे और इनसे कुरान सुनकर मुतासर होते। आप सहाबा से कुरान सुनाने की फरमाइश करते, हालांकि कुरान आप ही पर नाजिल हुआ था। इसी तरह तिलावत सुनकर आपको सुकून भी मिलता, खुशी और राहत भी हासिल होती। आप इस तरीके पर अमल करें कि चंद मिनट वक्त निकालें, दिन या रात में कोई वक्त मुतय्यन कर लें और रेडियो या टेप रिकॉर्डर पर अपने पसंदीदा कारी को सुने। जिंदगी की उलझने, इस्तराब और मसाइल आपको परेशान करने, कुव्वतों को तोड़ने और दिल को प्रगंदा करने के लिए काफी हैं, जिनसे अमन और सुकून सिर्फ किताब अल्लाह में और अल्लाह के जिक्र में मिलेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो लोग जो ईमान लाए हैं और इनके दिल अल्लाह के जिक्र पर मुतमईन है, कि अल्लाह की याद से ही दिलों को सुकून मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईन्नुल कुलूब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु से सूरत निसा पढ़वा कर सुनते, आप रोते हत्ता कि आपके रुखसार पर आंसू फैल जाते, तब आप फरमाते बस इतना काफी है। अबू मूसा अलैहिश्शरी के पास से आप गुजरते हैं जो कुरान पढ़ रहे थे, आप इनकी किरत सुनने लगते हैं और सुबह में फरमाते हैं, काश के तुम मुझे कल देखते जब मैं तुम्हारी किरत सुन रहा था। अबू मूसा बोले, अगर मुझे मालूम होता कि आप सुन रहे हैं तो मैं तो खुश इल्हानी से पढ़ता। क्या मतलब है, आप देखिए कि पहले इतना अच्छा पढ़ते थे, और ये फितरी सी बात है कि अगर लगे कि कोई सुन रहा है तो इंसान फिर और केयरफुली पढ़ता। अबू हातिम ने रिवायत की कि एक बुढ़िया के पास से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे और इसकी किरत दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुनते। जब वो पढ़ती हल अता हदीसुल गाशिया, तो इसे बार बार पढ़ती और दोहराती, जैसे बंदा अपनी लय में पढ़ता है ना। और ये कब होता है, जब समझ आती है, जब दिल लगा के पढ़ते हैं, और सिर्फ जब सपारा ही पूरा करना हो तो बंदा इस तरह थोड़ी पढ़ता है। वो बार बार कह रही है हलता का हदीसुल गाशिया। आप फरमाते हाँ मेरे पास वो खबर आई, हाँ मेरे पास वो खबर आई। वाकया ये है कि सुनने से कानों में रस खुलता है और सुकून महसूस होता है। एक मुमताज मुसलमान मुसन्निफ ने यूरोप का सफर किया और बहरी जहाज पर बैठे इनके साथ योगोस्लाविया की एक कम्युनिस्ट औरत भी सवार हुई, जो मार्शल टीटू के जुल्म से भाग कर आई थी। रास्ते में जुमे की नमाज का वक्त हो गया। इस मुसलमान मुसन्निफ यानी राइटर ने खड़े होकर खुतबा दिया और साथियों को नमाज पढ़ाई। नमाज में सूरत आला और गाशिया पढ़ी। औरत अरबी अच्छी तरह नहीं जानती थी, लेकिन उसने इस अजीब कलाम को सुना जिसकी नखमगी यानी रिधम और जेरो बम, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी तेज कभी स्लो पढ़ना, इसकी तरफ कान लगाए। फिर इन आयात के बारे में मुअल्लिफ़े मस्कूर से पूछा, यानी उनसे पूछा कि आप क्या पढ़ रहे थे, सवाल किया। उन्होंने इसे बताया कि ये अल्लाह का कलाम है, वो हैरान और शशदर रह गई। लिखने वाले यानी जिन्होंने ये पाइल अप किया वो कहते हैं कि जुबान न जानने की वजह से इसे इस्लाम की दावत न दे सका। सच ये है कि अगर तमाम इंस और जिन भी कुरान की मिसल लाने पर इकट्ठे हो जाएं और एक दूसरे का तावुन करें तो भी ऐसा नहीं कर सकते। सूरह बनी इसराइल की आयत 88 है। मतलब कुरान असर करता है, कुरान कुलूब पर छा जाता है, दिलों पर छा जाता है, रूहों पर इसकी हैबत तारी हो जाती है, वो दिलों पर एक जबरदस्त असर डालने वाली कुव्वत है।